है, विशुद्ध चेतना है जीव की। जब भौतिक जगत में आता है तो प्रकृति के संसर्ग में आने से पहले उसकी चेतना बिल्कुल शुद्ध होती है, जैसे पानी है ना। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है, स्वच्छत्वम अविकारित्वम शांतत्वम इति चेतसः वृत्तिभिर्लक्षणम प्रोक्तम यथापाम प्रकृति परम। प्रोपर लिखते हैं प्रारंभ में, ये तात्पर्य है, शुद्ध चेतना या कृष्ण चेतना की अवस्था रहती है। सृष्टि के तुरंत बाद चेतना कलुषित नहीं होती, किंतु मनुष्य भौतिक रूप से जितना कलमस ग्रस्त होता जाता है उसकी चेतना उतनी ही मलिन होती जाती है। अब महान तत्व से क्या होता है, अहंकार उत्पन्न होता है जो भगवान की निजी शक्ति से उत्पन्न है। अहंकार में मुख्य रूप से तीन प्रकार की क्रिया शक्तियां होती हैं, सत्व रज और तम। इन्हीं तीन प्रकार के अहंकार से मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और स्थूल तत्व उत्पन्न होते हैं। ये तीन प्रकार का अहंकार होता है। सात्विक अहंकार से मन उत्पन्न होता है, सात्विक अहंकार से मन उत्पन्न होता है, और राजस अहंकार से ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, और तामस अहंकार से स्थूल तत्व होते हैं। महतत्वान विकुर्वाणा भगवन वीर्य संभव क्रिया शक्ति अहंकार त्रिविधा समपद्यते वैकारिक तेजसश्चा तामसश्चा यतो भवः मनसश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि। अब स्थूल तत्वों का स्रोत इंद्रियां और मन, यही तीन प्रकार के अहंकार हैं, क्योंकि अहंकार ही उनका कारण है। ये संकर्षण के नाम से जाना जाता है, जो कि 1000 सिरों वाले साक्षात भगवान अनंत हैं। सहस्र सिर संसाक्षात यदम यमनंतम प्रचक्षते संकर्षणाख्यम पुरुषम भूते इंद्रिय मनोमयम। ये अहंकार कर्ता, करण और कार्य के लक्षणों वाला होता है। सतो रजो तथा तमो गुणों के द्वारा जिस प्रकार प्रभावित होता है, उसी के अनुसार ये शांत, क्रियावान या मंद लक्षण वाला माना जाता है। सत्व गुण में अहंकार शांत रहता है, रजोगुण में क्रियावान और तमोगुण में मंद होता है। कर्तृत्वम करणत्वम च कार्यत्वम चेति लक्षणम शांत घोर विमूढ़त्वम इति वा स्याद अहंकृते। अब सात्विक अहंकार से दूसरा विकार होता है, जिससे मन उत्पन्न होता है, जिसके संकल्पों विकल्पों से इच्छा का उदय होता है। सात्विक अहंकार से मन होता है। वैकारिका अंधकुर्वाणां मनस्तत्त्वं अजायत यत् संकल्पे विकल्पाभ्याम वर्तते काम संभवम्। मन में क्या होता है, संकल्प और विकल्प होता है। संकल्प विकल्प मतलब राग और द्वेष, मतलब कुछ चाहता है कुछ नहीं चाहता, ये मन के कार्य है। इसके बाद जीवात्मा का मन इंद्रियों के परम अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उसका नील श्याम शरीर है, शरतकालीन कमल के समान शरीर है। योगी जन उसे क्रमशः प्राप्त करते हैं। अहंकार के देवता हैं संकर्षण और मन के देवता हैं अनिरुद्ध। अहंकार के देवता संकर्षण और मन के देवता अनिरुद्ध हैं, अनिरुद्ध हैं। यद् विदुर यनुरुद्ध्याख्यम ऋषिकाणाम मधीश्वरम सारदेन्दीवर श्यामम सन्नाद्यम योगी भीषण। तात्पर्य में प्रभु लिखते हैं, योग क्रिया में मन को नियंत्रित किया जाता है और मन के स्वामी अनिरुद्ध हैं। बताया गया है कि अनिरुद्ध के चार भुजाएं हैं, जिनमें वे सुदर्शन चक्र, शंख, गदा तथा कमल पुष्प धारण किए रहते हैं। आगे भगवान कहते हैं, हे सती, रजोगुणी अहंकार में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि के कार्य हैं दिखाई पड़ने पर पदार्थों की प्रकृति के निर्धारण में सहायता करना और इंद्रियों की सहायता करना। तेजसा तो विकुर्वाणा बुद्धि तत्त्वम् अभूत् सति द्रव्य स्फुरण है विज्ञानम इंद्रियाणाम अनुग्रह। अच्छा, अब बुद्धि के और क्या कार्य हैं? संदेह करना, विपरीत ज्ञान, सही ज्ञान, स्मृति और निद्रा, ये बुद्धि के कार्य हैं, बुद्धि के लक्षण हैं। संशय है विपर्यासो निश्चया स्मृति रे विचार स्वापेत्युच्यते बुद्धेर लक्षणम रितितः प्रसंग। संदेह, रूपक बताते हैं बुद्धि के प्रमुख कार्यों में से संदेह एक है। किसी बात को आंख मूंद कर स्वीकार करना बुद्धि का लक्षण नहीं है, निसंदेह करती बुद्धि। अतः संत शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसके बाद रजोगुण अहंकार से दो प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ज्ञानेन्द्रियां तथा कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां प्राण शक्ति पर आश्रित होती हैं और ज्ञानेन्द्रियां बुद्धि पर आश्रित होती हैं। तेजसानी इंद्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागशः प्राणस्य हि क्रिया शक्तिर् बुद्धेर् विज्ञानं शक्तितां। इसके बाद जब तामसी अहंकार भगवान की काम शक्ति से प्रेरित होता है तो सूक्ष्म तत्व शब्द प्रकट होता है और शब्द से आकाश और उससे श्रवण इंद्रिय उत्पन्न होती है। ये तमोगुणी अहंकार के कार्य हैं। तामसा च विकुर्वाणा भगवन वीर्य चोदिता, तामसा च विकुर्वाणा भगवन वीर्य चोदिता, तम अभूत तस्मान नमा स्रोतम तु सबनगम। आप शब्द, पांच जो तत्व हैं उनमें सबसे पहले शब्द होता है। इसके बाद जो लोग विद्वान हैं और वास्तविक ज्ञान से युक्त हैं वे शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं, वह जो किसी पदार्थ के विचार को वहन करता है। शब्द का मतलब ही होता है किसी पदार्थ के अर्थ को जो वहन करे। शब्द ओट में खड़े वक्ता की उपस्थिति को सूचित करता है। अगर दिखाई भी नहीं पड़ता है तो शब्द के द्वारा आप जान सकते हैं कि भाई बोलने वाला कहां पर है कि नहीं, शब्द से ये। और आकाश का सूक्ष्म रूप है शब्द। अर्थाश्रयत्वम शब्दस्य दृष्टुर्लिंगत्वमेव च तन्मात्रत्वम च नभसोम लक्षणम कवयो विदुः। अब आकाश का लक्षण क्या है? समस्त जीवों को अवकाश यानी स्थान प्रदान करना, यह आकाश का लक्षण है। स्थान प्रदान करता है, जैसे कि प्राण वायु इंद्रिय और मन का कार्य क्षेत्र, ये आकाश तत्व के कार्य और लक्षण है। भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरंतरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नवसो वृत्ति लक्षणम्। अब शब्द उत्पन्न करने वाले आकाश में काल की गति से विकार उत्पन्न होता है, इस तरह स्पर्श तन्मात्रा प्रकट होता है, इससे फिर वायु और स्पर्श इंद्रिय उत्पन्न होती है। नवसा शब्द तन्मात्रा काल गत्या विकुर्वता स्पर्श भवत ततो वायु स्वक स्पर्शस्य च संग्रह। तो देखा क्रम, सृष्टि का क्रम क्या है? शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ और आकाश से स्पर्श तन्मात्रा उत्पन्न हुई। शब्द से आकाश उत्पन्न हुआ इसलिए आकाश में केवल शब्द का ही गुण है, है ना? और आकाश से स्पर्श तन्मात्रा उत्पन्न हुई और उससे वायु उत्पन्न हुई, तो वायु में शब्द और स्पर्श दोनों गुण हैं और स्पर्श इंद्रिय भी उससे उत्पन्न होती है, स्पर्श करने वाली। नभसा शब्द तन्मात्रा काल गत्या विकुर्वतः स्पर्श अभवत ततो वायु स्वक स्पर्शस्य च संग्रह। अब स्पर्श का मतलब क्या है? स्पर्श के लक्षण क्या है? कोमलता या कठोरता, स्पर्श शीतलता या उष्णता, स्पर्श के लक्षण है ये, जिन्हें वायु के सूक्ष्म रूप में लक्षित किया जाता है। मृदुत्वम कठिनत्वम चा शैत्यम उष्णत्वमेव च एतद् निस्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं न भस्कृतः। अच्छा, अब वायु के लक्षण क्या है? वायु की क्रिया है गतियों मिश्रण, शब्द को पदार्थों और अन्य इंद्रिय बोधों तक पहुंचाने के लिए ये वायु की क्रिया होती है। विभिन्न प्रकार की गतियां हैं, मिश्रण वायु में मिश्रण भी होता है ना, और शब्द को पदार्थों और अन्य इंद्रिय बोधों तक पहुंचाने का कार्य है वायु का, और अन्य समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य करते रहने के लिए सुविधाएं प्रदान करना ये वायु का कार्य है। चारणम व्योहनम प्राप्तिर नेतृत्व त्रम विशक्त संदेहो सर्वेन्द्रियाणाम आत्मत्व वायु कर्माभिलक्षण। चारणम का मतलब क्या है? तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद ने लिखा है, जब हम पेड़ों की शाखाओं को हिलते या जमीन पर सूखी पत्तियों को आपस में एकत्र होते देखते हैं तो हमें वायु की क्रिया का अनुभव होता है ना। पेड़ हिलते हैं या सूखे पत्ते इकट्ठे होते हैं, ये वायु की क्रिया है। अच्छा, वायु और स्पर्श की अंतः क्रियाओं से मनुष्य को भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। ऐसे रूपों के विकास के फलस्वरूप अग्नि उत्पन्न हुई और आंखें विविध रंगीन रूपों को देखती हैं। तो वायु से रूप उत्पन्न हुआ और रूप से अग्नि उत्पन्न हुई, तो अग्नि में फिर तीनों गुण हैं, शब्द स्पर्श और रूप तीनों गुण हैं। वायु से स्पर्श तन्मात्रां रूपम देवेरितात भूम समुत्थितम ततस्तेजं चक्षुरूपोपलम्बनम्। अब रूप रूप के लक्षण क्या है? रूप के लक्षण आकार प्रकार गुण और व्यष्टि से जाने जाते हैं। रूप के लक्षण आकार प्रकार और गुण और व्यष्टि, यह गुण और व्यष्टि से जाने जाते हैं। व्यष्टि का मतलब व्यक्तिगत व्यक्तित्व, किसी व्यक्ति का ना एक ये रूप है इस तरह से। द्रव्याकृतित्व गुणदा व्यक्ति संसात्वमेवचम तेजस्त्वम तेजसा साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः। फिर अग्नि के लक्षण क्या है? अग्नि के लक्षण क्या है? अग्नि अपने प्रकाश के कारण एक तो पकाने का कार्य करती है भोजन को, भोजन को पकाने का कार्य करती है और भोजन को पेट के अंदर पचाने का भी कार्य करती है और शीत नष्ट करने का कार्य करती है। शीत यानी ठंडक, जाड़ा को नष्ट करती है और भाप बनाने की क्षमता के कारण भाप बनाने की क्षमता के कारण भी अग्नि है और भूख की इच्छा उत्पन्न करती है, प्यास उत्पन्न करती है, खाने पीने की इच्छा उत्पन्न करती है अग्नि। द्योतनम पाचनम पानम अदनम मर्दनम तेजसो वृत्तिस्तेता शोषणम सुत्रडे विचम। इसके बाद क्या हुआ आगे चल करके? अग्नि और रूप की अंतः क्रिया से स्वात तन्मात्रा उत्पन्न हुई। स्वात, इस स्वात से जल उत्पन्न हुआ तो जल में फिर चारों गुण हो गए, शब्द स्पर्श रूप और रस चारों गुण हो गए और स्वाद ग्रहण करने वाली जीव भी प्रकट हुई उससे। रूप मात्रांकुर्माणा तेजसो देवम देव चोदिता रस मात्रम अभूत तस्माद अम्बोजेवा रस ग्रहम। अब रस के कई प्रकार हैं, कसाय मधुर तिक्त कटु अम्ल और लवण, कई प्रकार का रस होता है। कसायो मधुरस तिक्ता कट्वम ने तीन कथम भौतिका नाम विकारेण रस को विभेद्यते। अब जल के लक्षण क्या है? अन्य पदार्थों को गीला करने का लक्षण है, विभिन्न मिश्रणों को पिंड बनाने का लक्षण है, पानी से ही पिंड बनाते हैं है ना, तृप्ति पैदा करने का लक्षण पानी में है, जीवन पालन करने का लक्षण पानी में है, वस्तुओं को मुलायम बनाने का लक्षण पानी में है और गर्मी भगाना भी पानी का काम है और जलागारों की निरंतर पूर्ति करते रहना भी पानी का काम है और प्यास बुझाकर तरोताजा भी बनाना है, ये पाने का काम है। लेदनम पिंडनम तृप्ति प्राणनाप्यायनोंदनम तापापनो दो भूयस्तम अम्बसवृत्तयस्विम। अच्छा अब गंध, गंध का गंध उत्पन्न हुई कैसे, जल की और रस की अंतःक्रिया के फलस्वरूप गंध तन्मात्र उत्पन्न होती है, उससे पृथ्वी और घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न होती हैं, जिससे पृथ्वी की सुगंध का कई प्रकार का अनुभव हो सकता है। रसमात्रान्द्रिपुर्वाणात् अम्बसो देव चोदितान् गंधमात्रम् अभूत तस्मात् पृथ्वी घ्राणस्तु गंधकः। अब गंध कई प्रकार की होती है, मिश्रित गंध होती है, दुर्गंध होती है, सुगंध होती है, मृदु गंध, तीव्र गंध, अम्ली गंध, कई प्रकार की गंध है। करम पूते सौरभ्य शांतो ग्राम लादि भी पृथंग द्रव्यावय सम्यान गंध एको विभिद्यते। अब पृथ्वी के लक्षण क्या है, परब्रह्म के स्वरूपों को आकार प्रदान करना, ये पृथ्वी का कार्य है, है ना। मतलब भगवान की मूर्तियां पृथ्वी से बनती है ना, तो पर ब्रह्म का स्वरूप का आपको आकार प्रदान करना, आवास स्थान बनाकर आवास स्थान बनाना भी पृथ्वी का कार्य है, जल रखने का पात्र बनाना पृथ्वी का कार्य है। पानी कहाँ टिकता है, पृथ्वी के ऊपर टिकता है, जितने पात्र पृथ्वी के बने होते हैं, इस पृथ्वी के लक्षण है। और अन्य शब्दों में पृथ्वी समस्त तत्वों का आश्रय स्थल है। भावनम ब्रह्मणास्थानम धारणम संविशेषणम सर्वसत्व गुणों भेदः पृथ्वी वृत्ति लक्षणम। अब वो इंद्रिय जिसका विषय शब्द है श्रवण इंद्रिय और जिसका विषय स्पर्श है वो तो इंद्रिय कहलाती है, ठीक है ना। नभो गुण विशेषोर्थो यसे तत्स्रोत्रम उच्यते वायोर्गुण विशेषोर्थो यसे तत् स्पर्शनम विदुम। वो इंद्रिय जिसके विषय अग्नि का विशेष गुण रूप है वह नेत्र इंद्रिय कहलाती है, जिस इंद्रिय का विषय जल का विशेष स्वाद है वह रसनेन्द्रिय कहलाती है, जिस इंद्रिय का विषय पृथ्वी का विशिष्ट गुण गंध है वो घ्राणेन्द्रिय कहलाती है। तेजो गुण है विशेषोर्थो यसे तत्चक्षुरुच्यते अम्बो गुण है विशेषोर्थो यसे तन्द्रसनम विदुहम भूमेर गुण है विशेषोर्थो यसे सा घ्राण उच्यते। चूंकि कारण अपने कार्य में भी विद्यमान रहता है अतः पहले के लक्षण दूसरे में भी देखे जाते हैं, इसीलिए केवल पृथ्वी में ही सारे तत्वों की विशेषताएं पाई जाती हैं। पृथ्वी में पांचों विशेषताएं शब्द स्पर्श रूप रस और गंध पांचों हैं। परस्य दृश्यते धर्मो य परस्मिन् समन्वयं अतो विशेषो भावानां भूमा वेवोपलक्षते। जब ये सारे तत्व मिले नहीं थे तो सृष्टि के आदि कारण श्री भगवान ने काल कर्म तथा गुणों के सहित सात विभागों वाली अपनी समग्र भौतिक शक्ति के साथ साथ ब्रह्मांड में प्रवेश किया। अभी देखिए ये तत्व तो मिले नहीं है तो शरीर नहीं बन पा रहा है। एतान संगत्य यदा महदादीनि सप्तवे काल कर्म गुणों पे तो जगदादि रूपावेशन। भगवान की उपस्थिति के कारण क्षुब्ध होने और परस्पर मिलने से इन सात तत्वों से एक जड़ अंडा उत्पन्न हुआ जिससे विख्यात विराट पुरुष प्रकट हुआ। तो ये है विधि सृष्टि के, सृष्टि का क्रम इस प्रकार से है। जो वैज्ञानिक लोग कहते हैं पहले एक पिंड था, पिंड तो था, ये पिंड भी कैसे बना, यहां तो पूरा विस्तार से बता रहे हैं कि वो पिंड कैसे बना, एक अंडा कैसे बना, है ना। वैज्ञानिक लोग कहते हैं भाई एक पिंड था उसमें विस्फोट हो गया, कैसे हो गया विस्फोट और पिंड कहां से आया, है कि नहीं। यहां बता रहे हैं कि एक अंडा उत्पन्न हुआ, सात तत्वों से एक अंडा उत्पन्न हुआ जिससे विख्यात विराट पुरुष प्रकट हुआ उस अंडे में। ततस्ते नानु विद्येभ्यो युक्तेभ्यो उंडम अचेतनम उत्थितम पुरुष हो यस्मात् उदतिष्ठन् सौ विराट। वो अंडाकार ब्रह्मांड भौतिक शक्ति का प्राकट्य कहलाता है, इसकी जल अग्नि वायु नहीं जल वायु अग्नि आकाश अहंकार और महातत्व की परतें क्रमशः मोटी होती जाती हैं, प्रत्येक परत अपने से पूर्व वाली दस गुनी मोटी होती है, अपने से पूर्व वाली से दस गुनी मोटी होती है परत, और अंतिम बाह्य परत प्रधान से घिरी हुई है। इस अंडे के भीतर भगवान हरि का विराट रूप रहता है, जिनके शरीर के अंश 14 लोक है। ब्रह्मांड 7 आवरणों से घिरा हुआ है, और पहले आवरण से दूसरा आवरण 10 गुना मोटा है, 7 आवरण है। एतदंडम मिथेसाख्यम क्रम वृद्धैर दशोत्तर तो आदि परिवृतम प्रधान नामृतैर वही यत्रलोक वितानो यम रूपम भगवतम हरे। विराट पुरुष से भगवान उस सुनहले अंडे में स्थित हो गए जो जल में पड़ा हुआ था, उन्होंने उसे कई विभागों में बांट दिया। हिरण्मयादंड कोशात उत्थाय सलिलेशया समाविश्य महादेव बहुधा निर्विभेदकम्। सर्वप्रथम उस विराट पुरुष के मुख उत्पन्न हुआ, फिर वाक इंद्रिय यानी बोलने की इंद्रिय, फिर इसी के साथ अग्निदेव प्रकट हुए मुख से, और इस इंद्रिय के अधिष्ठाता देव हैं अग्नि। तब दो नथों ने प्रकट हुए, उनमें घ्राणेन्द्रिय और प्राण प्रकट हुए। निर्भिद्यता से प्रथमम मुखम वाणी ततो भवन वाण्या बहिनी रथो नासे प्राणो तो घ्राण एतयो। ऐसा नहीं कि उस पिंड में विस्फोट हो गया, नहीं, उस पिंड में विराट पुरुष के शरीर के अंग उत्पन्न हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? घ्राणेन्द्रिय के पास बात उसका देवता वायुदेव प्रकट हुआ, इसके बाद विराट रूप में दो आंखें प्रकट हुई, और उनके बाद उनके देवता सूर्य उत्पन्न हुए, फिर उनके दो कान उत्पन्न हुए, कर्णेन्द्रिय दिशाओं के देवता प्रकट हुए। घ्राणान वायु रिभिद्येताम अक्षणे चक्षुरे तयो तस्मात् सूर्यो न्यभिद्येताम कर्णा स्रोतम ततो दिशा। तब भगवान के विराट रूप विराट पुरुष ने अपनी त्वचा प्रकट की, और उस पर रोम मूंछ और दाढ़ी निकले, तत्पश्चात सारी जड़ी बूटियां प्रकट हुई और जननेन्द्रिय भी प्रकट हुई। निर्भेद विराजस्तम रोमस्मा श्रुवादयस्ततः तद औषधीयस्यासन धिष्णम निर्भिदे ततः। तत्पश्चात वीर और जल के देवता प्रकट हुए, फिर गुदा और उसकी इंद्रिय, और उसके बाद मृत्यु के देवता प्रकट हुए, जैसे सारा ब्रह्मांड भयभीत रहता है। भगवान की गुदा से मृत्यु उत्पन्न हुई है। रेतस्तस्मादाप्यासन निर्भिद्यते गुदम गुदादपानोपानाचा मृत्युर्लोक भयंकर। इसके बाद भगवान के विराट रूप के दो हाथ प्रकट हुए, और उन्हीं के साथ वस्तुओं को पकड़ने और गिराने की शक्ति आई हाथों में। फिर इंद्र प्रकट हुए, हाथ के देवता इंद्र। फिर दो पांव प्रकट हुए, उन्हीं के साथ चलने फिरने की क्रिया आई, और उसके बाद भगवान विष्णु प्रकट हुए, चरणों के देवता विष्णु। हस्तोचा निरभिद्येताम बलम ताभ्याम तथा स्वराट पादोचा निरभिद्येताम गतिस्ताभ्याम ततो हरि। इसके बाद विराट शरीर की नाड़ियां प्रकट हुई, और तब लाल रक्त कणिकाएं और रक्त प्रकट हुआ, इसके पीछे नदियां, और उनके शरीर में पेट प्रकट हुआ, नाड़ी की देवता नदियां हैं। नाड्यो से निरभिद्यंत ताभ्यो लोहित महावृतम सद्यस्तम भवन उदरम निरभिद्यत। अब उस पेट से भूख और प्यास उत्पन्न हुई, और इनके बाद समुद्र प्रकट हुआ, फिर हृदय प्रकट हुआ, और हृदय के बाद मन प्रकट हुआ। समुद्र श्वेत अथाश हृदय भिन्नम हृदयान मन उत्थितम। मन से उनके मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, मन का देवता चंद्रमा है ना। फिर बुद्धि, और बुद्धि के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो बुद्धि के देवता ब्रह्मा है। तब अहंकार, फिर शिव जी प्रकट हुए, और शिव जी के बाद चेतना या चेतना का अधिष्ठाता देव प्रकट हुआ। मनसश्चंद्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धिर्गिरांपति अहंकार ततो रुद्रस् चित्तम चैत्यस्ततो भवन। जब इस तरह देवता और विभिन्न इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता प्रकट हो गए, तो उन सबों ने अपने अपने उत्पत्ति स्थान को जगाना चाहा, किंतु ऐसा न कर सकने के कारण विराट पुरुष को जगाने के उद्देश्य से उनके शरीर में एक एक करके पुनः प्रविष्ट हुए वे देवता। सब मिलकर के जगाना चाहते हैं कि नहीं उठे, तो फिर से एक एक करके देवता उसमें प्रवेश हुए। एते अभ्युद्यता देवा नेवास्योत्तापने सकन पुनराविवेशो खानी तमत्थापय तुम क्रमान। अग्निदेव ने वागेंद्रिय से उनके मुख में प्रवेश किया किंतु विराट पुरुष नहीं उठा। तब वायुदेव ने घ्राणेन्द्रिय से होकर उनके नथनों में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। वही निर्वाचा मुखम भेजे नोदतिष्ठन तदा विराट घ्राणेन नासिके वायुर नोदतिष्ठन तदा विराट। तब सूर्यदेव ने चक्षु इंद्रिय से विराट पुरुष की आंखों में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। इसी तरह दिशाओं के देवताओं ने श्रवणेन्द्रिय से होकर उनके कानों में प्रवेश किया किंतु तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। अक्षणे चक्षुषा दैत्यो नोदतिष्ठन तदा विराट श्रोत्रेण कर्णो च दिशो नोदतिष्ठन तदा विराट। अब त्वचा और जड़ी बूटियों के देवताओं ने शरीर के रोमों से त्वचा में प्रवेश किया किंतु तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। तब जल के देवता ने वीर के माध्यम से लिंग में प्रवेश किया किंतु विराट पुरुष नहीं जागा। त्वचम रोम भी रो सद्यो नोदतिष्ठन तदा विराट रेत सापस्तु नोदतिष्ठत तदा विराट। अब क्या हुआ, मृत्युदेव ने अपान इंद्रिय से उनकी गोदा में प्रवेश किया किंतु विराट पुरुष नहीं उठे। तब इंद्रदेव ने हाथों की शक्ति से हाथों में प्रवेश किया किंतु फिर भी विराट पुरुष नहीं उठा। गुदम मृत्यु रपाने नोदतिष्ठन तदा विराट हस्ताविंद्रो बले नोदतिष्ठन तदा विराट। अब भगवान विष्णु ने गति के साथ उनके पांवों में प्रवेश किया किंतु तभी विराट पुरुष नहीं उठे। तब नदियों ने रक्त नाड़ियों और संतरण शक्ति के माध्यम से रक्त में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। विष्णु गत्यव चरणो नोदतिष्ठन तदा विराट नाड़ी नद्यो लोहित नोदतिष्ठन तदा विराट। अब समुद्र ने प्रवेश किया भूख प्यास के सहित पेट में लेकिन विराट पुरुष नहीं उठा। चंद्रदेव ने मन के साथ उनके हृदय में प्रवेश किया किंतु विराट पुरुष नहीं उठा। क्षुत्रभ्याम मदरम सिंधुर नोदतिष्ठन तदा विराट हृदय मनसा चंद्रो नोदतिष्ठन तदा विराट। ब्रह्मा भी बुद्धि के साथ उसके हृदय में प्रविष्ट हुए किंतु तब भी विराट पुरुष नहीं उठा। रुद्र ने भी अहंकार समेत उसके हृदय में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष नहीं उठा। बुद्ध्या ब्रह्मा हृदय नोदतिष्ठन तदा विराट रुद्रोभिमत्या हृदय नोदतिष्ठत तदा विराट। किंतु जब चेतना के देवता अंतःकरण के नियामक जब हृदय में प्रविष्ट हुए तो उसी क्षण विराट पुरुष कारण समुद्र से उठे। चेतना के देवता वासुदेव चित्तेन हृदय चैत्या क्षेत्रज्ञा प्राविशन यदा विराट तदेव पुरुषा सलिलाद उपतिष्ठत। जब मनुष्य सोता रहता है तो उसकी सारी भौतिक संपत्ति जैसे प्राण शक्ति ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां मन और बुद्धि उसे उठा नहीं सकती। वो तभी उठ पाता है जब परमात्मा उसकी सहायता करते हैं, है ना। ये जो बुद्धि है कर्मेंद्रियां है मन है ये कोई नहीं उठा सकते हैं, जो भी किस होता है परमात्मा ही उठाते हैं हृदय से। तथा प्रसुप्तम पुरुषम ग्राणेन्द्रिय मनोधिया प्राणेन्द्रिय मनोधिया प्रभवंती विना ये नोत्थापय तुम मोजसा। अतः मनुष्य को भक्ति वैराग्य और एकाग्र भक्ति के माध्यम से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति के द्वारा इसी शरीर में परमात्मा को विद्यमान समझकर उसका चिंतन करना चाहिए। यद्यपि वे इससे भिन्न रहते हैं, इस परमात्मा का ही शरीर में सबसे ज्यादा महत्व है। जितने भी देवता हैं शरीर में है ना, परमात्मा का सबसे ज्यादा महत्व है। तमस्मिन् प्रत्यगात्मानम् धिया योगे प्रवृत्तया भक्त्या विरक्त्या ज्ञानेन विवेच्यात्मनि चिन्तये। तात्पर्य प्रभु लिखते हैं मनुष्य अपने भीतर परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। वे मनुष्य के शरीर के भीतर रहते हैं किंतु वे शरीर से परे भी हैं। यद्यपि परमात्मा आत्मा के साथ उस शरीर में आसीन है किंतु शरीर में उसकी कोई अनुरक्ति नहीं रहती जबकि आत्मा की होती है। यहाँ पर यह स्पष्ट उल्लेख है कि मनुष्य को परमेश्वर की भक्ति करनी होती है। तो श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद का 26वां अध्याय हमने पूरा पढ़ के सुनाया है। तो चूंकि आज के श्लोक में भगवान ने सांख्य की चर्चा की है, इसलिए सांख्य में जो है ना अलग अलग तत्वों की गणना कैसे होती है, तत्वों का वर्णन कैसे होता है, वो हमने पढ़ के सुनाया है। अब किसी का कोई प्रश्न है? जो इनका प्रश्न है कि जैसे वर्षा का जल है, जैसे जमीन गिरता है तो वो दूषित होता है, उसी प्रकार से हमारी चेतना दूषित हो जाती है। इसको हमें समझना है। चेतना, चेतना की जो तुलना है वो पानी से की जाती है। आत्मा जो है ना वो तो अशुद्ध नहीं होता है, जीवात्मा तो भगवान का अंश है, लेकिन जीवात्मा की जो चेतना है तो वो दूषित होती है। तो जब जीव आध्यात्मिक जगत से इस भौतिक जगत में आता है तो चेतना उसकी शुद्ध रहती है, लेकिन जैसे भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो उसकी चेतना दूषित हो जाती है। अब दूसरी चेतना को स्वच्छ करना, यानी कृष्ण चेतना में लाना, अब जो है ना मतलब कठिन होता है। अब इसकी जो ना विधि बताएगी कि कैसे, किस विधि से हमें इसको शुद्ध करना है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता के जगत गुरु शिला प्रभुपाद के जाए।